आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। लोकसभा इंतखाबात के सातवें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में खातून वोटरों की तादाद मर्दों के मुकाबले 3% ज्यादा रही। एसबीआई की तहकीक में बताया गया है कि माली साल 2024 में भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 8% तक पहुंच जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि 1999 की करगिल जंग जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की दरअंदाजी की वजह से हुई थी। भारतीय फौज की मेजर राधिका सेन को साल का अक्वामे मुत्तहिदा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट का बावकार खिताब हासिल हुआ है और भारत की बाजुओं की कुश्ती टीम ने उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियाई चैंपियन 2024 में 7 तमगे जीते हैं, जिनमें 1 सोने और 6 कांसे के तमगे शामिल हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के सातवें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है, जिसके लिए वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इस मरहले के तहत 1 जून को 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 1 इलाके के 57 पार्लियामानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कल मगरबी बंगाल के बरासत और बशीरहाट लोकसभा हलकों में अपने उम्मीदवारों की हिमायत में शिमाली 24 परगना जिले में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुक्मरानी में बदउनवानी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और INDIA ब्लॉक आम लोगों की परवाह नहीं करते हैं और वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में मटुआ कम्युनिटी के लोगों को CAA के तहत शहरियत दी जा रही है। कल छोलटू में, किन्नौर जिले में और हिमाचल प्रदेश में नानखारी और रोहडू में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी मुल्क में एक बार फिर तरक्की का दौर शुरू करने के लिए वोट मांग रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इफरात जर और बेरोजगारी को कम करने में नाकाम रहने का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। वो कल हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रही थी। उन्होंने मरकजी हुकूमत की इस बात के लिए भी नुक्ताचीनी की कि उसने पिछले साल की आफत को कौमी आफत करार नहीं दिया। इस दौरान आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों की हिमायत में बिहार में पाटलिपुत्र पार्लियामानी हलके के मुख्तलिफ हिस्सों में चुनाव मुहिम अंजाम दी। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा के लोकसभा इंतखाबात रिजर्वेशन और भारतीय आईन को बचाने की लड़ाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का 400 से ज्यादा सीट का दावा धरा का धरा रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में अब महज 2 दिन बाकी बचे हैं। मरकजी वजीर दाखला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह उत्तर प्रदेश में 4 रैलियों से खिताब करेंगे। वो आज महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर में रैलियां करेंगे। गाजीपुर में वो पार्टी उम्मीदवार के हक में एक रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीराला योगी आदित्यनाथ कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव दूधी असेंबली हलके में पार्टी उम्मीदवार के लिए चुनाव मुहिम करेंगे, जहां इंतखाबात के आखिरी मरहले के तहत जिमनी चुनाव मुनाकिद होगा। वो बाद में रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर लोकसभा हलकों में भी रैलियां करेंगे। अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव आज कुशीनगर में एक रोड शो करेंगी। झारखंड के 3 हलकों गोड्डा, दुमका और संथल खित्ते के साहबगंज में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। 1 जून को लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के तहत यहां वोटिंग होगी। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, एजेएसयू और बाएं बाजू की पार्टियों समेत मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा अपने इत्तेहादी उम्मीदवारों के हक में वोटरों को रागिब करने के लिए एक के बाद एक रैलियों से खिताब कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा आज पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में दुमका और गोड्डा में इंतखाबी मीटिंग से खिताब करेंगे और रोड शो करेंगे, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी कल दुमका में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। साहबगंज में एक रैली से खिताब करते हुए जेएमएम लीडर कल्पना सोरेन ने कहा कि उनके शौहर और साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को जालसाजी करके जेल भेजा गया है। दूसरी जानिब झारखंड कांग्रेस के सरबरा राजेश ठाकुर ने इल्जाम आयद किया है कि ईडी मौजूदा इंतखाबात पर असर डालने के लिए काम कर रही है। बिहार में लोकसभा इंतखाबात के सातवें और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम के लिए एनडीए और अजीम इत्तेहाद के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा और मुहिम अंजाम देने वाली सरकर्दा शख्सियात इंतखाबात वाले इलाकों में आज एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आरा बक्सर और पटना साहिब लोकसभा हलकों में तीन इंतखाबी रैलियां करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी भी जहानाबाद काराकट नालंदा ससाराम और पाटलिपुत्र लोकसभा हलकों में अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। आरजेडी सरबरा लालू प्रसाद अपनी बेटी और आरजेडी की उम्मीदवार की हिमायत में पाटलिपुत्र पार्लियामानी हलके के मुख्तलिफ हिस्सों में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव भी ससाराम काराकट बक्सर और पाटलिपुत्र पार्लियामानी हलकों में अवामी मीटिंगें करेंगे। पंजाब में जालंधर मखसूस लोकसभा हलका मुल्क में सबसे ज्यादा बावकार हलकों में से एक है। जालंधर स्पोर्ट्स एशिया के शहर के तौर पर भी जाना जाता है। कुल 9 असेंबली हलकों के साथ इस हलके में 16,54,003 राय देहंगान हैं। इनमें 8,59,687 मर्द राय देहंगान, 7,94,272 खातून राय देहंगान, जबकि मुखन्नस वोटर्स की तादाद 44 है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में खवातीन वोटरों की तादाद मर्दों के मुकाबले 3% ज्यादा रही। इंतखाबी कमीशन ने कल इस बात का इंकशाफ किया है। इंतखाबी अमले ने हफ्ते के रोज हुए लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में डाले गए वोटों की मुकम्मल तादाद जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 64.95% खवातीन ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया, जबकि मर्दों की तादाद 61.95% रही। तीसरी जिन्स के दरमियान वोटिंग फीसद 18.67 रिकॉर्ड किया गया। बिहार झारखंड लद्दाख ओडिशा और उत्तर प्रदेश में खवातीन वोटरों की तादाद मर्दों से ज्यादा रही। काबिले जिक्र बात यह है कि मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा 81.62% वोटिंग दर्ज की गई, जो वहां के वोटरों के अंदर जोशो खरोश के जज्बे को जाहिर करता है। दूसरी जानिब बिहार में 51.95% वोटिंग हुई, जो दूसरे इलाके के मुकाबले सबसे कम है। 25 मई को छठे मरहले के तहत 8 रियासतों की 58 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने बंगलादेशी बाशिंदों और रोहिंग्या अफराद को मुल्क की शिमाल मशरकी सरहदों के रास्ते लाए जाने के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के मुताबिक इस शख्स का नाम जलील मियां है और यह त्रिपुरा का रहने वाला है। इससे पहले इस केस में 33 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। ये केस एनआईए ने आसाम खसूसी टास्क फोर्स एसटीएफ से अपने हाथों में लिया है। तहकीकात से पता चला है कि जलील इंसानी तिजारत के रैकेट में असल साजिश तैयार करने वाला शख्स है और वो एक मुलजिम जीवन रूद्रपाल का करीबी साथी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कल एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें माली साल 2023-24 की चौथी सिमाही में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी की 7.4% शरे तरक्की की पेशगोई की है। साथ ही मजमूई शरे तरक्की 8% तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। यह रिपोर्ट एसबीआई के इक्तसादी तहकीक के महकमे ने जारी की है, जिसमें भारत की शरे तरक्की पर आलमी इक्तसादी उतार चढ़ाव के खातिरखा इम्कानी असरात को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में भारत में शहरी और देही दोनों शोबों में लगातार शरह तरक्की का रुझान जाहिर किया गया है। शहरी इकतसादी तरक्की की वजह मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त, हवाई अड्डे के मुसाफिरों के ट्रैफिक, जीएसटी वसूली, क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन, पेट्रोलियम की खपत और टोल वसूली की मजबूत कारकर्दगी रही है। दूसरी तरफ देही इकतसादी तरक्की एक मुस्बत रुझान के सबब हुई है, जिसमें डीजल की खपत और दोपहिया गाड़ियों की फरोख्त का अहम रोल रहा है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ किए गए एक समझौते की खिलाफवर्जी की है। उन्होंने यह इंकशाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएलएन की जनरल काउंसिल की एक मीटिंग में किया। मीटिंग में नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर का दौरा किया था और 21 फरवरी 1999 को लाहौर एलानिया में दस्तखत किए थे। نواز شریف نے کہا کہ اس معاہدے کا مقصد بھارت اور پاکستان کے درمیان امن و استحکام کو فروغ دینا تھا، لیکن دستخط کیے جانے کے کچھ ہی دن بعد پاکستانی فوجیوں نے جموں کشمیر کے کرگل ضلع میں دراندازی کر دی تھی، جس کی وجہ سے کرگل جنگ ہوئی۔ بھارتی فوج کی میجر رادھیکا سین کو سال 2023 کے ملٹری جنڈر ایڈوکیٹ کے خطاب کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس خطاب کے تحت ایک قیام امن فوجی کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے خواتین اور لڑکیوں کے تئیں ان کی وکالت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ایک سچی رہنما اور مثالی شخصیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی یہ خدمات اقوام متحدہ کے لیے مجموعی طور پر ایک سچا تحفہ ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے پیشگوئی کی ہے کہ شمال مغربی اور وسطی بھارت میں شدید گرمی کے حالات میں کل سے بتدریج کمی ہونے کا امکان ہے۔ جموں، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، بہار اور اوڈیشہ میں بھی کل تک اسی طرح کے حالات رہنے کا قوی امکان ہے۔ شمال مغربی اور وسطی بھارت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی ہونے کی پیشگوئی نہیں ہے۔ جموں کشمیر میں جموں اور اس کے مضافاتی علاقوں میں شدید گرمی پڑ رہی ہے، جہاں درجہ حرارت کل 43.6 ڈگری سیلسیس رہا، جو اس موسم کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ خطے میں پچھلے ہفتے سے شدید گرمی کی صورتحال کا سامنا ہے، جہاں 16 مئی سے درجہ حرارت لگاتار 40 ڈگری سے اوپر چل رہا ہے۔ جموں کشمیر میں ہیٹ ویو کا سامنا ہے اور جموں میں آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جمبو زو حکام نے جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے اقدامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ جمبو چڑیا گھر جمبو شہر کے مضافات میں نگروٹا کے خانپور میں واقع ہے اور 162 ہیکٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ہریانہ میں جھلسا دینے والی گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سرسا میں کل اس سیزن کا سب سے گرم دن تھا، جہاں درجہ حرارت 50.3 ڈگری سیلسیس رہا۔ ہریانہ میں سرسا ریاست کا گرم ترین مقام ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہریانہ میں نوح میں بھی درجہ حرارت 49 ڈگری رہا۔ ازبکستان کے شہر تاشکند میں ایشیائی چیمپئن شپ 2024 میں بازوؤں کی کشتی میں بھارتی ٹیم نے 7 تمغے جیتے ہیں، جن میں 1 سونے اور 6 کانسے کا تمغے ہیں۔ شریمنت جھا نے بھارت کی طرف سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے معذور افراد کے زمرے میں بائیں بازو کی کارکردگی میں سونے کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ انہوں نے سیدھے ہاتھ کے زمرے میں کانسے کا تمغہ بھی جیتا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی۔
شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پپوا نیو گنی میں لینڈ سلائڈ سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور پپوا نیو گنی کو ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ اس خبر کو ہندوستان ایکسپریس، ملا پرتاپ، راشٹریہ سہارا سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے پہلے صفحے کی سرخی بنا ہے۔ روزنامہ، راشٹریہ سہارا اور کئی اخباروں نے میزورم میں لینڈ سلائڈنگ سے 2 بچوں سمیت 17 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر کو پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی اخباروں نے سمندری طوفان ریمل سے بڑے پیمانے پر تباہی ہونے کی خبر کو بھی پہلے صفحے پر سرخی بنایا ہے۔ بھارت ورلڈ ہیلتھ اسمبلی سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین مقرر، اس خبر کو بھی ہندوستان ایکسپریس سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے پیش کیا ہے۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے چناؤ مہم اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے 6ٹے مرحلے میں خاتون ووٹروں کی تعداد مردوں کے مقابلے 3% زیادہ رہی۔ SBI کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2024 میں بھارت کی GDP کی شرح ترقی 8% تک پہنچ جانے کی امید ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ 1999 کی کرگل جنگ جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی دراندازی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بھارتی فوج کی میجر رادھیکا سین کو سال کا اقوام متحدہ ملٹری جنڈر ایڈوکیٹ کا باوقار خطاب حاصل ہوا ہے اور بھارت کی بازوؤں کی کشتی ٹیم نے ازبکستان کے شہر تاشکند میں ایشیائی چیمپئن 2024 میں 7 تمغے جیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔